संस्कार शरीर रह सकते हैं। औदारिक वैक्रियक तेजस कारण, औदारिक आहार तेजस कारण, क्योंकि वैक्रियक और आहार शरीर एक साथ नहीं होते, इसलिए पांच शरीरों में से संसारी जीव के एक साथ चार शरीर
को छठे स्थान में रह नहीं सकते थे।
नहीं, जिनके वैक्रिय वृद्धि हो सकती मनी महाराज,
मनी महाराज के, अच्छा,
तो उनके औदारिक के साथ वैक्रिक शरीर तो बन जाएगा, लेकिन फिर उनके आहार शरीर नहीं बनेगा।
मतलब उनको आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अपना रूप
वैक्रिय और आहार में से कोई एक नहीं, मेरे को भोग बन गया। और जो अंत का शरीर कारण शरीर है वो उपभोग रहित, अर्थात इंद्रियों के द्वारा या शब्द वगैरह के द्वारा उसको ग्रहण में नहीं आ सकता, इसलिए उसको निरुपभोग कहते हैं। तेजस शरीर भी निरुपभोग है तो फिर उसे क्यों नहीं कहा, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो कहते तेजस शरीर में कोई योग नहीं होता उसके माध्यम से, कारमन शरीर के माध्यम से तो आत्मा के प्रदेशों का परस्पंदन होता है, इसलिए कारमन का योग है, लेकिन तेजस का योग नहीं है, इसलिए तेजस शरीर की चर्चा यहाँ पर आवश्यकता नहीं है निरुपभोग कहने की। उसके लिए गर्भ सम्मूषण गर्भ सम्मूषणक माध्यम, गर्भ जन्म और सम्मूषण वाले जो शरीर उत्पन्न होते हैं वो सब औदारिक शरीर, आद्यम इसी अर्थ औदारिक औदारिक शरीर हमेशा गर्भ जन्म वाला होगा या सम्मूषण जन्म वाला। औपाधिकम वैक्रिय का उत्पाद जन्म से जो शरीर उत्पन्न होता है वो वैक्रिय होता है, हालांकि वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यंच है, लब्धि से भी वैक्रिक शरीर की उत्पत्ति होती, विशेष तपस्या से जो वृद्धि की प्राप्ति होती है उसे लब्धि कहते हैं। इसलिए मनुष्यों के तप के प्रभाव से औदारिक से वैक्रिक शरीर हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से औपाद जन्म वाले को ही वैक्रिक शरीर होता है। तेजसम अपि, तेजस शरीर भी लब्धि के रूप में वृद्धि के रूप में संभव है, इसलिए दो सूत्र अलग से देती है। हारक शरीर किसे होगा तो कहते शुभम विशुद्ध मव्यागाति चा हारकम प्रमत्त संयत सैव, आहारक शरीर तो अत्यंत शुभ है, विशुद्ध है और किसी से रोके नहीं रोकता, व्याघात से रहित है और प्रमत्त संयत अर्थात छठे गुण स्थान व्यक्ति मुनि महाराज के ही होता है, और उनके मस्तिष्क से निकल करके वो केवली भगवान के पास तक जाकर सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करके अंतर्मुख में लौटकर पुनः मुनि के शरीर में ही यथावत प्रवेश कर जाता है।
इसका मतलब महाराज यही हुआ कि अगर उनको कोई शंका हो तो उसका समाधान वो तुरंत दे लेते हैं।
हाँ, इस तरह से जो है पांच शरीरों का कथन करके अब सूत्रकार विभिन्न प्रकार की लिंग की चर्चा और करते तीन सूत्रों में नारक सम्मूषण नपुंसकानी, नारक यानी नारकी जीव और सम्मूषण जीव नपुंसक वेद वाले ही होते हैं।
नारकी नपुंसक भी होते
हैं? हाँ, नारकी जीव सब नपुंसक होंगे, सम्मूषण से जन्म से जो भी हुए हैं वो सब नपुंसक होंगे। न देवा, देवों में लेकिन नपुंसक वेद नहीं होता, उनके सिर्फ स्त्री और पुरुष वेद होता है, शेषास्त्री वेद जो शेष बचे वो सब जो है यानी नारकी देव और सम्मूषण के अलावा जितने शेष जीव बचे गर्भज त्रियंच और मनुष्य वे सब तीनों वेद वाले होते हैं। विशेषता ये है कि भूभूमि अम्लेक्ष खंड के जो मनुष्य हैं वहां पर भी नपुंसक वेद नहीं होता, वहां नारकी स्त्री और पुरुष ये दोनों ही होते हैं। इसके बाद जीव कौन कौन से जीव अपनी आयु पूरी भोग कर मरण करते हैं, कौन से जीव अपनी आयु से पहले मरण को प्राप्त हो जाते हैं, इसके लिए ये अंतिम सूत्र है, इस पर चर्चा अपन विशेष। तो चर्चा ये है कि कौन से जीव जो है अपनी आयु पूर्ण करके मरण करते हैं और कौन अपनी आयु पूर्ण किए बिना अकाल में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो इस सूत्र में दिया है। औपाधिक जन्म वाले, उत्पाद जन्म वाले तो देव और नार की है, और चरमोत्तम देह, चरम और उत्तम दोनों है, अर्थात उसी भाव से मोक्ष जाने वाले आचार्य महाराज इसमें विशेष रूप से तीर्थंकरों को ही लेते हैं। चरम भी देह है और उत्तम भी देह है, तो ऐसे चरमोत्तम देह वाले यानी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भोग भूमि के जीव हैं वो अपनी पूरी आयु भोग कर ही शरीर छोड़ते हैं। उनके जो है विष है, शस्त्र अस्त्र इत्यादि है, इनके द्वारा उनकी आयु समय से पहले क्षीण नहीं होती है। बाकी शेष जो जीव हैं उनकी आयु का कोई नियम नहीं, तो इसलिए इनके लिए अनपवर्त आयु कहा, इनका अकाल में मरण नहीं होगा। इतने जीवों का शेष सबकी जो है आयु अकाल में भी पूरी हो सकती है। और अकाल के लिए उन्होंने परिभाषा ये बनाई है कि बाह्य निमित्त के मिलने पर जो आयु क्षीण होती है वो अकाल मरण, और जिसमें कोई बाह्य निमित्त नहीं मिला और आयु धीरे धीरे करके विषय क्षीण होते गए तो वो सामान्य प्रकार का मरण कहलाएगा, वो अकाल मरण नहीं कहलाएगा। उदीर्ण होने से आयु की जो स्थिति है वो जल्दी ही पूरी हो जाती है। असल में अकाल मरण का मतलब ये है कि आयु होने निषेध जल्दी घिर गए। ऐसा नहीं है कि आयु शेष बच गई हो और फिर बाद में हमें उसको भोगना पड़े, नहीं, वो आयु तो धीरे धीरे जो फिरती थी वो एक साथ इकट्ठी फिर जाती है। उसके लिए उदाहरण भी इन्होंने दिया है, आम वगैरह को हम पाल में समय से पहले पका लेते हैं, इसी तरह से जो है आयु के निषेक मान लीजिएगा 60 वर्ष या 80 वर्ष के बंदे थे और कोई दुर्घटना हो गई और 40 वर्ष में दुर्घटना हुई तो वो जो 40 वर्ष के निषेक हैं वो जो 80 वर्ष के निषेक हैं वो 40 वर्ष में फिर करके पूरे नष्ट हो जाते हैं। जीव अपनी ही आगामी वैसी नई आयु को बांध करके तो चला जाता है।
इस आयु के निषेक कर रहा पर जो कर्मों के दूसरे फल होंगे मान जिस
ये सब उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर
प्राप्त होता है, मतलब वो बाकी बचे रहते हैं।
तो सामान्य जो मनुष्य त्रेंश है उनकी आयु तो घट जाती है, बाकी जो अनवर्त आयु वाले हैं वो तो असंख्यात वर्ष वाले मनुष्य त्रेंश देवभूमियों के रहेंगे, जो नारकी जीव रहेंगे और जो चरम शरीरी हैं उन पर कोई भी अस्त्र शस्त्र इत्यादि से आयु का घात नहीं है, ये उसका विशेष रूप से आशा है।
अनिल कुमार जी के लेख में बात महाराज जी उसकी उनको बढ़ा भी सकते हैं।
हाँ, तो वो उन्होंने जो उदाहरण दिया है बढ़ाने का वो इससे दिया है, अपने आदि पुराण में दिया है कि आयु बढ़ जाती है। तो वहाँ आयु बढ़ जाने का तात्पर्य क्या है, जितनी आयु जीव बांध करके आया है वो आयु तो बढ़ती नहीं है,
निषेक उतना ही रहते
हैं, निषेक उतना ही रहते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ डीके है वो अगर प्रॉपर होता है तो हम उसे सामान्य रूप से जीते हैं तो वो आयु पूर्ण मानी जाती, पूर्ण आयु ही बड़ी हुई आयु कहलाएगी। हम अपने अनीति या कि अन्याय के वजह से या किसी बाह्य निमित्त के मिलने से 60 की जगह 55 वर्ष में मरने वाले थे और हमने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके और जरा शांति से जीना शुरू किया तो हमने 60 साल के 60 साल पूरे जी लिए, तो हमारी 55 से आयु 60 बड़ी कहानी की नहीं कहलानी। यहाँ ये आशय मैं लेता हूँ, जब उनका पेपर आया था तब भी मैंने ये कहा था, ऐसा आशय नहीं है कि 60 बांध के जीव लाया है और वो अपने प्रयासों से इस भाव में उस आयु को 65 कर ले।
भी इसमें वर्षों का निश्चित है कि वो निषेक खेलने वाले,
निषेक खेलने का रेट फिक्स है और वो निषेक जो है इतने, ये निषेक इतने समय में खिलेगा, उसकी स्थिति इतनी पड़ गई, वो जो स्थिति है वो स्थिति तो वर्षों में ही तो स्थित रहेगी कि इतने वर्ष स्थिति स्थित है। जैसे किसी को 60 वर्ष तो 60 वर्ष में उसके आयु के निषेक खिलेंगे, अगर वो गड़बड़ करेगा तो 60 वर्ष से कम में खिल जाएंगे, लेकिन वो अपने प्रॉपर जैसे जीना चाहिए वैसा जिएगा तो पूरे 60 वर्ष, लेकिन 60 के 62 नहीं हो सकते। पर वो जो 58 होने वाले थे तो 58 नहीं हुए और बीच में हमने जरा गड़बड़ से जी थी आयु तो 58 होने लगे थे 60 की जगह, फिर हमने अपना वे प्रॉपर कर दिया जीने का, हमने शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि कर दिया तो फिर शास्त्र में लिखा कि जो इस शास्त्र को पढ़ेगा उसकी आयु बढ़ जाएगी, मतलब वो जो अपनी डैमेज कर रहा था 58 में वो बढ़ गई, वो 60 हो गई उसकी, पर 60 तो एग्जैक्टली थी उसकी, ऐसा ना उसका आशय, मैं ऐसा ले रहा हूँ। अब फिर इसके बाद जो है ऐसा भी जाने, अब जो है इस तरह से इति द्वितीय अध्याय, ये दूसरा अध्याय पूरा हुआ। अब तीसरे अध्याय में नरक की चर्चा है और चौथे अध्याय में स्वर्ग की चर्चा है। तीसरे अध्याय में नरक के अलावा मध्यलोक के बारे में और जम्बूद्वीप और भरत क्षेत्र के बारे में भी तीसरे अध्याय में चर्चा है। रत्न शर्करा बालुका पंकधूम तमो महातम प्रभा भूमियो घराम दुआता का प्रतिष्ठा सत्ता ठाता। ये रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ऐसे नाम वाली सात भूमियां हैं जो कि नीचे नीचे हैं, और ये भूमियां विभिन्न वात वलयों के आधार पर टिकी हुई हैं। ये भूमियां घनोगति वात वलय के आधार पर है, घनोगति वात वलय घन वात वलय के आधार पर है, घन वात वलय जो है वो तम वात वलय के आधार पर है, और तम वात वलय आकाश पर आधारित है। इस तरह से ये इसमें जैसे लिखा ना, घनांगु वात आकाश प्रतिष्ठा, घन घनोदधि, और फिर पहले तो घनोदधि वात वलय, फिर घनोदधि वात वलय घन वात वलय पर, और घन वात वलय तम वात वलय पर, ऐसे तीन वात वलय हैं। मैं इनको ऐसे मानता हूं कि ये एटमॉस्फियर है, एक तरह का एक बहुत सघन वायु का एटमॉस्फियर है जिसको हम घन वात वलय कहते हैं, और फिर दूसरा है जिसमें कॉम्पैक्ट तो है वायु लेकिन उसमें मॉइस्चर भी बहुत है, तो घनोदधि, सघन वायु और जल से मिश्रित वायुमंडल, और फिर तनुवात यानी बहुत विरल वायु वहां पर है। ऐसे तीन स्फीयर जो है वलय है,
जब मतलब एटमॉस्फियर,
वायुमंडल को ही वात वलय कहते हैं।
ठीक है महाराज जी, क्योंकि वो अभी जो चल रहा है कि चंद्रमा पर जल है कि नहीं है, इसकी खोज जैसे मतलब जिसको भी चंद्रमा कह रहे हैं, तो मतलब वो वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसी की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
तो तीनों प्रकार के वायुमंडल मिलते हैं, कहीं कहीं पर सघन वायु भी है, विरल वायु भी है, और कहीं पर वायु में मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत है, तो वही तो घनोदधि
जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे
विरल
होते जाते हैं, धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहां आप
हम प्रवेश ही नहीं कर सकते वहां पर, वही तो सघन है, सघन वायु है जहां हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होना शुरू होगी। तो इस तरह से ये सातों भूमियां नीचे नीचे अवस्थित हैं,
मतलब ऊपर की बात मानूंगा पर नीचे,
ये नीचे नीचे की बात कह रहे हैं कि ये इस तरह से नीचे स्थित हैं। इनकी मोटाई भी अलग अलग दी हुई है, जैसे जो रत्नप्रभा नाम की पहली पृथ्वी है तो वो 180,000 योजन मोटी है, और उसकी मोटाई में भी तीन पार्ट किए हैं। ऊपर का भाग जो खर भाग कहलाता है वो 16,000 योजन मोटा है, फिर उसके नीचे का जो पंख भाग है वो 84,000 योजन मोटा है, और नीचे उसके अग्रबहुल भाग है वो 80,000 योजन मोटा है। ये तीन पार्ट रत्न प्रभा वृत्ति के हैं। इसमें जो अग्रबहुल भाग है वहां से नरक शुरू होते हैं, नारकी जीवों की एग्जिस्टेंस वहां जाकर के है। खर भाग के ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़ करके जो बीच में 14,000 योजन मोटा और 1 योजन प्रमाण लंबा चौड़ा भाग है, उसमें राक्षस के अलावा सिर्फ 7 प्रकार के जंतर रहते हैं। टोटल जंतर 8 प्रकार के होते हुए आगे चर्चा करेंगे, उसमें से राक्षस जाति के जंतरों को छोड़ के बाकी 7 जातियों के देव यहाँ रहते हैं, और जो असुर कुमार जाति के देवों के अलावा भवनवासी के 9 भेद हैं, 10 में से 9 ये भवनवासी देव ही पंख भाग में रहते हैं। इस तरह से अग्रबहुल भाग से तो पहला नरक शुरू हो जाता है। इसमें और भी डिटेल अगर अपन जानना चाहें तो और डिटेल इसमें दिया है कि एक एक पृथ्वी, जैसे पहली पृथ्वी है तो पहली पृथ्वी के नीचे कुछ कम एक राजु अंतराल छोड़ करके फिर दूसरी पृथ्वी शुरू होती है, उसकी मोटाई 32,000 योजन है, फिर उसके नीचे कुछ कम एक राजु फिर अंतराल गैप बीच में है, ऐसे सेठ की तरह नहीं है ना ऐसे घंट की तरह है, बीच में गैप है, फिर एक राजू का अंतराल छोड़ के तीसरी वालू का पृथ्वी है, उसकी मोटाई सिर्फ 28,000 योजन की है, फिर उसके नीचे कुछ कम एक राजू का अंतर देके चौथी पृथ्वी है वो सिर्फ 24,000 योजन मोटी है, फिर उसके नीचे फिर एक राजू का अंतर देकर के कुछ कम और 20,000 योजन मोटी पांचवी पृथ्वी है वो 20,000 योजन मोटी, और फिर उसके बाद जो है छठी जो है 16,000 योजन उसके नीचे है, और फिर कुछ कम एक राजू का अंतर फिर देकर के 8,000 योजन मोटी सातवीं पृथ्वी है, और सातवीं पृथ्वी के नीचे जो एक राजू शेष बचा लोक के अंत तक, वहां पर जो है सिर्फ निरोधिया जीवों के रहने का कल्पना नाम की पृथ्वी ऐसी मानी गई, वहां प्रस जीव नहीं है, वहां सिर्फ निगोदिया जीव पाए जाते। वैसे निगोदिया जीव पूरे लोकाकाश में है, पर वो वहां पर स्पेशल उनके लिए,
वहां और कोई नहीं है,
वहां और कोई नहीं है। इस तरह से ये नीचे के अधोलोक की व्यवस्था है। अब इसमें जो ये तो उनका बेस हो गया, अब इसमें नारकी जीवों के रहने के जो बिल है, रहने के स्थान को बिल कहते हैं, जैसे कि देवों के रहने के स्थान को विमान कहते हैं और लोगों के रहने के स्थान को घर या मकान कहते हैं, उसी तरह से नारकी जीवों के रहने के स्थान को बिल कहते हैं। तो वो बिल इसमें कितने कितने हैं इसकी संख्या या ध्यान बताए। पांचत्रिंशत पंच विंशति पंच दश दश त्रिपंचो नैक नरक शत सहस्राणी पंच चैव यथा क्रम। क्रम क्रम से रत्नप्रभा आदि भूमियों में नरकों की संख्या पहले वाले पृथ्वी के अपवर्ण भाग में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, फिर तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख, छठे में 5 कम 1 लाख और सातवें में 5। सिर्फ इतने ही बिल हैं जिनमें कि नारकी जीव रहा करते हैं।
मतलब नारकियों की संख्या फिक्स है,
नारकियों के स्थान के रहने के की संख्या फिक्स है, उनके उनके इतने स्थान बने हैं, उनमें नारकी जीव असंख्यात रहेंगे, उनकी संख्या असंख्यात फिक्स है, कोई अनकाउंटेबल है, वो उसको हम फिक्स नहीं बना बता सकते हैं कि इतने ही नारकी जीव। अब वहां पर जो नारकी जीव रहते हैं, उन नारकी जीवों की क्या स्थिति है, क्या नेचर है उनका, उनके सुख दुख का क्या हिसाब है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी जीवों ने सदा, नित्य का मतलब सदा लिया, हमेशा लेशा अशुभतर होती है, अशुभतर ही उनके परिणाम होते हैं, अशुभतर ही देह होती है, अशुभतर ही वेदना होती है और अशुभतर ही उनकी विक्रिया होती है। अशुभतर से तात्पर्य इनका प्रेमजों की अपेक्षा से है, कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया है इसलिए उससे कंपेयर करता है। तो पहली और दूसरी पृथ्वी के नारकियों के तो कापोत लेशा होती, फिर तीसरी के ऊपर कापोत रहती, नीचे जाकर के नील लेशा रह जाती, चौथे में फिर पूरे में नील लेशा है, पांचवें और के ऊपर में तो नील है और नीचे से फिर कृष्ण लेशा शुरू हो जाती, छठे में भी कृष्ण लेशा और सातवें भी परम कृष्ण लेशा। इस तरह अपन देखें तो कृष्ण, नील और कापोत ये तीन लेशाएं अशुभ लेशाएं हैं और वो भी अशुभ अशुभतर होती चली जाती हैं। जैसे जैसे नरक नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो और अधिक अशुभ होती चली जाएंगी लेशाएं। अच्छा, फिर परिणाम का अर्थ यहाँ पर है कि उनका जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दों का जो परिणमन है, वहां के क्षेत्र की विशेषता के निमित्त से वो बहुत दुखदायी होता है, अशुभतर ही परिणाम, उनका जो परिणमन होता है रूप रस गंध इत्यादि का, वो सब खराब ही दिखने वाला होता है, शरीर भी बहुत अशुभ होता है, कुंडक संस्थान होता है, देखने में भयंकर मालूम पड़ता है, और शरीर की जो ऊंचाई है वो क्रमशः बढ़ती चली जाती है। पहली पृथ्वी के पहले पटल में तो नारकी की ऊंचाई जो है 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल है, जो कि जाकर के 7 मिनट में 500 धनुष हो जाती है, जितनी विशाल काय होती उतनी ही ज्यादा तकलीफदायक हो जाती है, और शीतोष्ण की वेदना भी उनके लिए बहुत भयंकर होती, तो वेदना भी अशुभतर है। और फिर जो विक्रिया करते हैं अर्थात वो अपने छोटे बड़े नाना रूप बना लेते हैं, वो विक्रिया भी उनकी बुरी से बुरी विक्रिया ही होती है, वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं लेकिन उनके द्वारा होता हमेशा बुरा ही है। इस तरह ये उनके अपने लाइफ स्टाइल के बारे में हुआ, उनके सुख और दुख के बारे में, तो सुख तो है नहीं, दुख की गंभीरता बहुत है, और ये तो क्षेत्रगत या शरीरगत दुख हो गए, शारीरिक हो गए या क्षेत्र के दुख हो गए, लेकिन और भी दुख है, परस्परों भी दुख है। इसके सिवाय नारकी जीव आपस में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को भिड़ा देते हैं, उनके जो अवधि ज्ञान कु अवधि ज्ञान होता है तो तो एक दूसरे की लड़वाने में वो मदद करते हैं, एक दूसरे को उदीरित करते हैं, मतलब बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई नहीं भी लड़ रहा हो तो दूसरा आकर उसे कुछ बात याद दिला करके और उससे और अधिक क्रोध उत्पन्न करा के और लड़वा देगा। इस तरह ये परस्पर एक दूसरे को प्रेरित करके भी वे दुख पाते हैं। और संक्लिष्ट स्वरूप दुखास्त प्राग चतुर्थ्या, और संक्लेश परिणाम वाले जो अंबावरीश जाति के असुर कुमार देव हैं, वे भी तीसरी पृथ्वी तक जाकर के नारकी जीवों को दुख देते हैं और आपस में लड़वा देते हैं। वे अपने अवधि ज्ञान के द्वारा उनको जितना नहीं मालूम वो और बदावा करके और आपस में एक दूसरे को लड़वा देते हैं। यहाँ पर आयु कितनी होती है इसकी चर्चा और करके और नरक का वर्णन पूरा कर रहे हैं आचार्य महाराज। ऐश्विक त्रिशक्त दस सप्तश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंश सागरोपमा सत्ता नाम परा स्थिति। नारकी जीवों की जो उत्कृष्ट आयु है वो पहली पृथ्वी में एक सागर, दूसरी पृथ्वी में तीन सागर, तीसरे में सात सागर, चौथे में दस सागर, फिर पांचवी में सत्रह सागर, छठवीं में बाईस सागर और अंत में सातवीं पृथ्वी में जाकर के तैतीस सागर की आयु इनकी हो जाती है। इस तरह से ये अधोलोक का वर्णन पूरा हो।
ऑक्सीजन की तो कोई आवश्यकता नहीं, मैंने
नहीं है
क्योंकि शरीर तो
लगता नहीं है, उनका वैक्रिक शरीर है इसलिए वहां पर। इसी तरह से देवों के भी उनको 15-15 दिन में, कम से कम छोटे मोटे देव को 15 दिन में एक बार सांस लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पर बहुत लगता यही है कि वहां का वातावरण जो है बहुत
अच्छा लेना चाहिए। जो उनका तो वैक्रिक शरीर है,
लिखा तो ये है कि उनके श्वासोच्छ्वास तो नामकरण तो है इसलिए श्वासोच्छ्वास तो है,
नारकियों का भी
नारकियों का भी श्वासोच्छ्वास तो है, लेकिन श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया हर एक जीव की अलग अलग होती है। हमारी जैसे सांस लेने की स्थूल प्रक्रिया है, अब जरा विचार करिए कि वायु का एक जीव एक इंद्रिय है, उसके भी श्वासोच्छ्वास है, वो कैसे सांस लेता हो। जिस वायु को हम सांस की तरह लेते और छोड़ते हैं, उस वायु को अपना शरीर बनाकर रहने वाले जीव किससे किस उस तरह सांस लेते होंगे, ये बड़ा विचार जैसा है। तो रेस्पिरेशन अपने जैसा उनका नहीं होता, पर उनको आवश्यकता होता है,
मतलब वो
शक करते हैं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वैसा उनके लिए तो अनिवार्यता नहीं है। नारकी जीवों का वर्णन पूरा हो गया
जी,
या ये समझें कि अधोलोक का वर्णन पूरा हो गया। मध्य लोक में द्वीप और समुद्र किस तरह से अरेंज हैं ये चर्चा आगे का। जंबू द्वीप लग्नो दाद्या शुभ नामानु द्वीप समुद्र। मध्य लोक में जंबू द्वीप को प्रथम द्वीप की तरह और लवण समुद्र ये प्रथम समुद्र है, ऐसे अनेक द्वीप और समुद्र हैं शुभ नाम वाले। पहला जंबू द्वीप है और उसके बाद पहला समुद्र लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाद फिर धातकी खंड ये द्वीप है, और फिर धातकी खंड के बाद दूसरा समुद्र वो कालोदरी समुद्र है, कालोदरी के बाद तीसरा द्वीप पुष्करवर द्वीप है, और उसके बाद तीसरा समुद्र वो भी पुष्करवर समुद्र है। इसके आगे जो द्वीप इसी तरह के द्वीप हैं, जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है, और सबसे अंत में जो है वो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। इस तरह असंख्यात द्वीप और समुद्र ये मध्य लोक में है। पहली बार द्विर्द स्तंभ पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वाले आकृति, और ये जो द्वीप और समुद्र हैं इनका विस्तार आगे आगे दूना दूना होता चला गया। प्रत्येक द्वीप और समुद्र अपने से पहले के द्वीप और समुद्र को घेरे हुए हैं, चूड़ी के आकार का है, वलयाकार का कहते हैं, चूड़ी के आकार का, यानी पहले द्वीप का जितना विस्तार है उससे दूना पहले वाले समुद्र का है, और उससे भी दूना विस्तार दूसरे द्वीप का है, और फिर उससे दूना विस्तार दूसरे समुद्र का है। इस तरह से ये एक दूसरे से दूने दूने विस्तार वाले और एक दूसरे के घेरे हुए चूड़ी के समान है। अब उनका आकार तो मालूम पड़ गया, लेकिन इसमें और क्या विशेषताएं हैं, तो तन मध्य मेरु नाभिक वृत्त योजन शत सहस्र विष्कंभो जंबू द्वीप। ये जो द्वीप समुद्र है उनके बीच में जो जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप सूर्यमंडल के समान गोल है, पहली बार। और इसका विस्तार कितना है? 1,00,000 योजन। शत सहस्त्र का मतलब 1,00,000 योजन। और इसके बीच में जो है मेरु पर्वत, इसी को सुमेरु भी कहते हैं। इस तरह ये जम्बू द्वीप के बारे में इन्होंने इतनी बात कही कि जम्बू द्वीप का विस्तार बता दिया और जम्बू द्वीप का आकार बता दिया और जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है, ये बताया। जम्बू द्वीप का नाम जो है वो इसलिए रखा गया, इन्होंने इसमें विशेष रूप से और लिखा है कि जम्बू वृक्ष, जामुन का वृक्ष, वो उत्तर कुरु देवकुरु वगैरह जो भोग भूमियां हैं उनमें वो पृथ्वी का एक प्रकार का वो वृक्ष है, यानी शाश्वत है, अनादि निधन है। इसलिए इस द्वीप का नाम भी उसी वृक्ष के आधार पर जम्बू द्वीप रख दिया। अब जम्बू द्वीप में जो क्षेत्र हैं और पर्वत हैं वो कितने हैं उनकी चर्चा करते हैं। भारत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत रावत वर्षा क्षेत्राणि। इस जम्बू द्वीप में भारत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत रावत ऐसे 7 क्षेत्र। तद विभाजिना पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रूपनी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। और इन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं जो कि पूर्व से पश्चिम तक लंबे फैले हुए हैं। उनके नाम यही है, हिम्बान पर्वत, महाहिम्बान पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। ये 2 क्षेत्रों के बीच में एक पर्वत है, भरत और हेमवत क्षेत्र के बीच में हिम्बान पर्वत है। हिम्बान पर्वत की ऊंचाई 100 योजन। हेमवत और हरिवर्ष के बीच में महाहिम्बान पर्वत है, उसकी ऊंचाई 200 योजन। हरिवर्ष और विदेह क्षेत्र के बीच में निषद पर्वत है, ऊंचाई इसकी दुगनी 400 योजन है। विदेह और रम्य क्षेत्र के बीच में नील पर्वत है जो फिर 400 योजन ऊंचा है। रम्यक और हैरण्यवत के बीच में रुक्मी पर्वत है जो 200 योजन ऊंचा है। और फिर हेमवत और ऐरावत के बीच में शिखरी पर्वत है जो 100 योजन ऊंचा है। इस तरह से ये सभी पर्वत जो है पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र के बीच में इस तरह से पाए जाते हैं। पर्वतों का रंग हेमार्जुन तपनी वैडूर रजत हिमलय है। ये जो पर्वत हैं उनके रंग इस तरह हैं कि हिम्बान पर्वत चीन देश की शिल्प के समान है, पीत वाला है। महाहिम्बान चांदी के समान सफेद है। निषद पर्वत सूर्य के समान तपे हुए सोने के समान पीले रंग का है। नील पर्वत मोर के कंठ के समान नीला है। रुक्मी पर्वत चांदी के समान सफेद है। शिखरी पर्वत फिर पीत वर्ण का है, सिल्क के समान। इन पर्वत का और विशेष वर्णन करते हैं तो मणि विचित्र पार्शा ऊपर मूले चतुल्य विस्तार है। इन पर्वत के जो पार्श्व भाग है वो अनेक प्रकार की मणियों से भरे हुए हैं। मूल में मध्य में और ऊपर इसका विस्तार समान है पर्वत। ये विशेष बातें हैं इसके बारे में। इन पर्वतों पर जो तालाब है उनकी क्या स्थिति है? तो पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महाकुंडरी कुंडरी का अरदास देशानुपरी। इन पर्वतों के ऊपर पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महाकुंडरी और कुंडरी ये क्रमशः क्षय तालाब हो जाएंगे। प्रथम योजन सहस्रायन अस्तदर्भ विष्कम रदा। पहला जो पद्म नाम का तालाब है वो पूर्व पश्चिम 1,000 योजन लंबा और उत्तर दक्षिण 500 योजन चौड़ा। बहुत बड़े बड़े गहराई जो है 10 योजन आ रहा है। इस तालाब की गहराई जो है वो 10 योजन है। अब अपने यहां लिया तो ये है कि नदी पर्वत इत्यादि को नापने के लिए बड़ा योजन लिया जाता है, 2,000 कोश का होता है, और छोटा योजन तो सिर्फ 2 कोश का होता है। अब इनको बड़े योजन से नापेंगे तो बहुत बड़े बड़े विस्तार इनके हैं। फिर कह रहे हैं तन्मध्य योजनम पुष्करम। वो जो तालाब है उनके बीच में कमल भी है, तो पहला वाला जो तालाब है पद्म तालाब वहां पर 1 योजन लंबा चौड़ा कमल है। लेकिन ये कमल वनस्पति का एक न होकर पत्नी है। तो द्विगुण द्विगुणा रहा पुष्करानी चा, इस तालाब के आगे और जो तालाब है वे सब दूने दूने होते हैं और उनमें जो कमल है वे भी दूने दूने परिमाण वाले हो जाते हैं। यानी पद्म तालाब से दूना महापद्म है और महापद्म से दूना त्रिंच है, इसी तरह कमल भी जो है वो दूने दूने परिमाण। तन्निवासिनो देव्य श्री भी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लुपम स्थिति ससामानिक परिषद का, इन कमल की जो कर्णिकाएं हैं उनमें बने हुए महलों में निवास करने वाली देवियां श्री री रीति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये छह देवियां, इनकी आयु एक पल्ल की होती है और वे सामान्य और पारिषद जाति के देवों के साथ वहां पर रहती है। बड़े कमल के आसपास जो और जो कमलाकार और तापी है उन पर बने हुए मकान में वो सामान्य और पारिषद जाति के जो देव होते हैं वैमानिक देवों में उनके साथ ये देवियां। अब यहां पर बहने वाली जो नदियां हैं गंगा सिंधु रोहित रोहिकास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा सरित स्तन मृतिका, इन सात क्षेत्रों के बीच में बहने वाली जो नदियां हैं वो गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण कूला और रूप कूला रक्ता और रक्तोदा, ऐसी ये 14 नदी दयोर दयोर पूर्वा पूर्वगा, एक एक क्षेत्र में क्रम से दो दो नदियां बहती हैं और दो दो नदियों में पहली वाली नदी तो जाती है पूर्व की तरफ समुद्र की तरफ और शेषास्त पर्गा और जो पीछे वाली नदी है दो दो में से दूसरे नंबर की नदी है वो सब पश्चिम की तरफ जाती है, यानी कि गंगा और सिंधु में से गंगा पूर्व की तरफ जाएगी सिंधु पश्चिम की तरफ जाएगी, रोहित रोहिताश्या में से रोहित पूर्व की तरफ जाएगी रोहिताश्या पश्चिम की तरफ जाएगी, इसी तरह हरित हरिकांता और अन्य जो नदियां हैं उनमें से पहली पहली वाली तो पूर्व की तरफ जाती है दूसरी जो है वो पश्चिम समुद्र की तरफ जाकर के और मिल जाती है। इसमें एक थोड़ी सी विशेषता ये है कि जो छह तालाब हैं उनमें से 14 नदियां निकली हैं, तो क्या होता है कि पहला वाला जो तालाब है और जो आखिरी छठा वाला तालाब है उसमें से तीन तीन नदियां निकलती हैं बाकी में से दो ही निकलती हैं। इन नदियों का परिवार क्या है, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुवादी नदियां, गंगा सिंधु आदि जो नदी है उनकी 14,000 ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी परिवार नदियां भी इस तरह से है। अब भारत क्षेत्र का विस्तार,
ये जो नदियां हैं अभी जो वर्तमान में जो गंगा सिंधु जिनको अपन कहते हैं तो वो अलग है,
ये उन्हीं की प्रतीक रूप मैं सोचता हूं कि उतने विस्तार वाली तो आज नहीं है लेकिन नाम वही है,
नाम वही है
और वो दिशा भी उनकी
नदी वैसी है जैसे पूरब को जाती है पश्चिम को जाती है
और इनकी इतनी ट्रिब्यूटरीज हैं बताइएगा तो 14,000 तो अच्छा वो पूरी 14,000 भारत क्षेत्र में ही हुआ ऐसा नहीं है, आरी खंड में मलेक्ष खंड में भी ये नदियां बहती हैं। भरता है षडविंशति पंच योजन शत विस्तार षड चैत भागा योजन से, सीधा गणित निकाल के दे दिया है कि भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और एक योजन के 19 में भाग में से 6 भाग समान है, यानी 526 से ही 6 बटे 19 भाग है, इस तरह से ये वर्षधर वर्षा विदेहांता, आगे के पर्वत और जो क्षेत्र विदेह क्षेत्र तक के भरत क्षेत्र से दूने दूने, यानी हिम्बान पर्वत का विस्तार भरत क्षेत्र से दूना, फिर हिम्बान पर्वत के विस्तार से हेमवत क्षेत्र का विस्तार दूना, फिर हैमवत क्षेत्र के विस्तार से महाहिमबान पर्वत का विस्तार दूना, महाहिमबान पर्वत से हरि क्षेत्र का विस्तार दूना, फिर हरि क्षेत्र के विस्तार से निषद पर्वत का विस्तार दूना, निषद पर्वत से विदेह क्षेत्र का विस्तार दूना है, फिर उत्तरा दक्षिण तुल्य। तो उत्तर में जो ऐरावत से लेकर के नील तक जितने क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार वगैरह सब दक्षिण के भारत आदि क्षेत्रों के समान ही जानना चाहिए, यानी विदेश क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण की रचना एक जैसी है, दक्षिण की तरफ भारत क्षेत्र है, उत्तर की तरफ ऐरावत क्षेत्र है, तो विदेश से ऐरावत की तरफ जाते समय जो संरचना है वैसी ही संरचना विदेश से भारत की तरफ आते समय संरचना बने, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि उत्तर और दक्षिण में संरचना विषम है। भरत रावत की ओर वृद्धि राशौ सब सम्याथा सर्पिंड सर्पिंड, भरत और ऐरावत ऐसे ही जो दो क्षेत्र हैं जंगली द्वीप में जहाँ उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के भेद से छह प्रकार का समय विवाहित होता है, जिसमें मनुष्यों की आयु, श्रेणी की ऊंचाई, भोगोपभोग, संपदा वगैरह घटती और बढ़ती रहती है। उत्सर्पणी में दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, अवसर्पणी में दिनों दिन घटती चली जाती है। इनके नाम भी हैं सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ये छह अवसर्पणी के भी हैं और उत्सर्पणी के भी हैं। उत्सर्पणी में क्रम दूसरा रहेगा, अवसर्पणी में दूसरा रहेगा। टोटल जो है इसका अवसर्पणी का प्रमाण जो है वो 10 कोड़ा कोड़ी सा है और उतना ही 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी का है, दोनों काल मिलकर के कल्प काल कहलाता है। अब उसमें से जो सुषमा सुषमा पहला काल है उसका 4 कोड़ा कोड़ी है, फिर दूसरा जो सुषमा काल है उसका 3 कोड़ा कोड़ी है, फिर जो तीसरा काल है उसका 2 कोड़ा कोड़ी है, और फिर जो चौथा काल है उसका 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी है, वो जो 42,000 वर्ष बचे उसमें से 21,000 पांचवें और छठवें का है, इस तरह से ये उन्होंने दे दिया है। ताभ्याम अपराह भूमियो अवस्थिता है, भरत और ऐरावत के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें काल परिवर्तन नहीं होता, वे अवस्थित हैं, सदा एक सी ही दशा रहती, हानि वृद्धि नहीं होती। एक द्वि त्रिपल्लोपम स्थितियों हेमवत कहा एक वर्षक दैव प्रकार, हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों की आयु तो 1 पल्ल की होती, हरि क्षेत्र के मनुष्यों की 2 पल्ल की और देवकुरु के मनुष्यों की आयु 3 पल्ल की होती है। ये क्या है, वो भूमियां हैं, ये भरत और ऐरावत में तो कर्म भूमियां हैं, बाकी जो हेमवत हरि विदेह में भी जो देवकुरु और उत्तर गुरु हैं उनमें भूभूमि है, बाकी जो विदेह के 32 देश हैं उनमें तो कर्मभूमि है, पर वहां भी चौथा काल ही वही करता रहता, चौथे काल के प्रारंभ से अंत फिर प्रारंभ से अंत, वहां पर क्षण काल का परिवर्तन नहीं होता। तथोत्तरा दक्षिण जंबूद्वीप के क्षेत्रों की जैसी स्थिति है वैसी ही उत्तर के जंबूद्वीप की है, यानी हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों की स्थिति, हिरण्यवत क्षेत्र के मनुष्यों की स्थिति और हेमवत क्षेत्रों के मनुष्यों की स्थिति समान रहेगी, उधर रम्य क्षेत्र है इधर हरिवर्ष क्षेत्र है दोनों की समान रहेगी, उधर उत्तर कुरु है इधर दक्षिण कुरु है तो दोनों की समान रहेगी। इस तरह से विदेहेषु संख्येका, विदेह क्षेत्र में मनुष्यों की आयु संख्यात वर्ष होती है, संख्यात वर्ष होती है, मतलब उसको बिना काउंट किया जा सकता है, एक पूर्व कोटि की अधिकतम आयु होती है, 84 इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि एक पूर्व कितना होता, तो 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता,
तो आपने लिखी दी
ऐसा उसमें दिया, एक पूर्व कोटि या एक कोटि पूर्व इतनी आयु कर्मभूमि में होती है। भरतस्य स्कंदो जंबूद्वीपस्य 96 भागा, जो अपन ने अभी कहा था कि 536 सही 6/19 उसी को दूसरे ढंग से भी कह रहे हैं कि जंबूद्वीप का विस्तार तो 1,00,000 योजन है और उसमें 190 का भाग देने पर जो प्रमाण आता है वो भरत क्षेत्र का है, ऐसा भी अपन चाहे तो कर सकते,
आएगा
वो ही ज्यादा था। उन्होंने दिया भी है कि भरत क्षेत्र का विस्तार 526 से ही 619 विजन बताया है, सो वो जम्बू द्वीप के 1,00,000 विजन विस्तार का 190वां भाग है। इसलिए यहाँ एक दूसरे सूत्र ने उसको क्लियर कर दिया, दीर्घाती खंडे धातकी खंड द्वीप में भरत आदि क्षेत्र दो दो है, ऐसा अर्थ लिया इसका। दीर्घाती खंडे यानी धातकी खंड द्वीप में भरत आदि क्षेत्र सब दो दो हो जाए। इतना ही पर्याप्त है, और बहुत डिटेल करना मुझे डिटेल भी कर सकते। पुष्कर आदि क्या, और पुष्कर वर्दीप पूरा नहीं, आधा पुष्कर वर्दीप में भी भरत आदि क्षेत्र और हिमबान आदि पर्वत दो दो। एक्चुअली इनको ढाई द्वीप के बारे में विशेष बताना है, इसलिए दो द्वीप और तीसरे द्वीप के आधा पुष्कर वर्दीप। प्राण माने सोत्राण मनुष्य, और ये जो पुष्कर वर्दीप है उसको दो भागों में विभाजित करने वाला बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। तो वो कह रहे हैं कि प्राण मानुषोत्तरा मनुष्य, मानुषोत्तर पर्वत से पहले ही मनुष्य पाए जाते हैं, यानी जम्बू द्वीप धातकी खंड और आधे पुष्कर वर्दीप पर्यंत ही मनुष्यों का आवास है, यानी ढाई द्वीप के बाहर कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता है। इसी से मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के द्वीपों के और क्षेत्र की रचना भी कहीं पर नहीं पाई गई है, ढाई द्वीप के बारे में ही विशेष रूप से चर्चा है। आर्यमलेख शास्त्र, ये जो द्वीप और ढाई द्वीप हैं उनमें जो मनुष्य रहते हैं वो आर्य और मलेक्ष दोनों प्रकार के। आर्य तो वे कहलाते हैं जो स्वयं गुणवान हैं या गुणवानों के साथ रहते हैं, वे आर्य कहलाते हैं, और मलेक्ष वे हैं जो कि धर्म से शून्य होते हैं और पशुवत अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
गुटमारा जी, अभी अपने भरत क्षेत्र में मतलब इस देश में भी ऐसी स्थिति कुछ लोग
हाँ पशुवत आचरण करते हैं, तो वो मलेक्ष जो है वो दो प्रकार के, फिर इसमें मलेक्ष भी कहे गए हैं, अंतरदीपज और कर्म भूमिज मलेक्ष कहे गए। लवण समुद्र और कालोदही समुद्र के आसपास जो 96 द्वीप है उनमें निवास करने वाले अंतरदीपज मलेक्ष कहलाते हैं। उनकी आकृति इत्यादि सब असंस्कृत, मतलब वो संस्कारवान नहीं है, लेकिन जो मलेक्ष खंड में रहने वाले मनुष्य, मलेक्ष खंडों में रहने वाले भरत क्षेत्र के आई खंड और मलेक्ष खंड, उनमें जो मलेक्ष खंड है उनमें रहने वाले वो कर्म भूमिज मलेक्ष कहलाते हैं। आरी खंड में जो भील आदि जातियां पाई जाती हैं उनको भी कर्म भूमिज मलेक्ष कह सकते हैं, ऐसा इन्होंने स्पष्टीकरण दिया। भरतई रावत विदेहा कर्म भूमियों या प्रदेव गुरुत्तर गुरुख्या, भरत ऐरावत और विदेह कर्म भूमि और भूमि की चर्चा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पांच भरत पांच ऐरावत हैं, देवगुरु और उत्तर गुरु को छोड़ दिया जाए तो पांच विदेह हैं, ये सब जो है वो कर्म भूमि है। पांचों मेरु संबंधी पांच हेमवत, पांच हरिवर्ष, पांच हिरण्यवर्ष, पांच देवगुरु और पांच उत्तर गुरु, ये सब 30 भोग भूमि है। इसमें 10 उत्कृष्ट भोग भूमि है, 10 मध्यम है और 10 जगन है। उन सब में जो है भोग भूमि की जैसी व्यवस्था होती है वो सारी की सारी है, बाकी पांच वर्त पांच ऐरावत और पांच विदेह हैं उनमें कर्म भूमिया 15 कर्म भूमिया इस तरह से पाई जाती है। द्वि स्थिति परावरे त्रिकल्यों का नाम कर्म भूमि, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्ल होती है और जगन अंतर्मोहित होती है। तीन पल्ल की संख्या बहुत बड़ी संख्या ये भोग भूमि के मनुष्यों की अपेक्षा से तीन पल्ल बताया है, तीन पल्ल दो पल्ल और एक पल्ल, और अधिकतम जो कर्म भूमि के मनुष्यों की है वो तो 1 कोटि पूर्व वर्ष की है। त्रियज्ञों ने यादांचा, त्रियंचों की उत्कृष्ट स्थिति भी तीन पल्ल होती है और जगन स्थिति अंतर्मोहित होती है। त्रियंच भी जो भोग भूमि में रहते हैं उनकी भी इतनी अधिक अधिक आयु यहां पर रहती है, इस तरह से ये होती है। संक्षिप्त में रख लिया क्योंकि इसमें कोई डिटेल व्यवस्था संरचना भी समझें तो सिर्फ ये जानकारी के लिए है कि इस तरह इसमें। तीसरा अध्याय पूरा हुआ, चौथे अध्याय में विशेष रूप से देवों की चर्चा है। देवास चतुर्मी काया, देवों के चार निकाय यानी चार समूह है। निकाय का अर्थ समूह है। देव चार प्रकार के हैं ऐसा नहीं कहा, देवों के चार निकाय या चार समूह है, भवनवासी, ग्रंथर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चार समूह है देवों के। इन देवों के निशाएं कौन सी होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। आदि का त्रिशु पीतांत लेशा, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीन समूहों के देवों के कृष्ण, नील, कातो और पीत, ये चार लेशाएं होती हैं। पीतांत लेशा का अर्थ है पीत है अंतिम लेशा, अर्थात कृष्ण, नील, कापूत और पीत, ये चार लेशाएं होती हैं। वैसे देवों में शुभ लेशाएं होती हैं, अशुभ लेशा का वर्णन इस अपेक्षा से किया क्योंकि मनुष्य से या पिरेंट से जो देव पर्याय में जाते हैं और विशेष रूप से भवन राशि व्यंतर ज्योतिष के देवों में जाते हैं, ये संक्लेश परिणाम पूर्वक जाते हैं, इसलिए उनके अपर्याप्त अवस्था में जबकि वो अपने शरीर की संरचना पूरी नहीं कर पाए हैं उस अवस्था में उनके कृष्ण, नील और कापूत ये तीन लेशाएं पाई जाती हैं। पर्याप्त अवस्था होने पर तो उनके एकमात्र पीत लेशा ही होती है, इसलिए पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को मिला करके हमें और कृष्ण, नील, कापूत और पीत ये चार लेशाएं कह दी, इसलिए अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या देवों की भी अशुभ लेशा होती है, उनके जन्म लेने के समय होती है, बाद में जन्म के उपरांत पीतलेशा होती है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। अब ये जो चारों समूह हैं उनके भी जो भेद प्रभेद हैं वो कितने हैं ये बताते हैं। भवनवासी देवों के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8 भेद हैं, ज्योतिष देवों के 5 भेद हैं, वैमानिक देवों में जो कल्पवासी देव हैं उनके 16, स्वर्गों में 12 भेद हैं, इसलिए द्वादश विकल्पा लिखा है। स्वर्ग तो 16 है लेकिन उनमें जो देव हैं उनके 12 भेद हैं। इस तरह 10, 8, 5 और 12 ये चारों निकाय के देवों के भेद का भेद है। अब देवों में और भी जो ग्रेडेशन होता है या उनकी अपनी श्रेणियां होती हैं वो बताते हैं। इंद्र सामान्य प्रायस्त्रुं पारिषदात्मक्षलोक पालाने प्रतीन कार्यो विशिकास चैतुषा। देवों के प्रत्येक निकाय में इंद्र सामानिक, प्रायस्त्रुंश, पारिषद, आत्मक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीनक, आवियोग और किलविषक, ये 10-10 भेद होते हैं। ये सामान्य कथन है, आगे के सूत्र में जाकर के विशेषता बता देंगे। अन्य देवों में नहीं पाई जाने वाली जो विशेष अनिमा आदि रिद्धियां हैं उनके द्वारा जो परम ऐश्वर्य को भोगता है और ऐसा जो देवों का स्वामी है वो इंद्र कहलाता है, और जिसकी आयु, शक्ति, परिवार, भोगोपभोग वगैरह सब इंद्र के समान है, पर जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला नहीं है वो सामानिक है। ये सामानिक जो देव है वो पिता, गुरु या उपाध्याय के समान माने जाते हैं। प्रायस्त्रुंश वे देव हैं जो संख्या में 33 होते हैं और मंत्री या पुरोहित के समान माने जाते हैं, उनको प्रायस्त्रुंश कहते हैं। इंद्र की सभा में सदस्य के रूप में विद्यमान रहने वाले देवों को पारिषद कहते हैं। इंद्र की सभा में जो शस्त्र आदि लेकर इंद्र के पीछे खड़े रहते हैं उन्हें आत्मरक्ष कहते हैं। इंद्र को किसी शत्रु का भय नहीं होता पर यह उसके ऐश्वर्य का प्रतीक है। कोतवाल के तुल्य जो देव हैं वे लोकपाल कहलाते हैं, अपने यहां उसको ये कोतवाल लिख रहे हैं, पर इनका जैसा वर्णन दिया है लोकपाल का वो एक तरह से होम मिनिस्टर जैसा मालूम पड़ता है। पैदल, अश्व, वृषभ, रथ, हाथी, गंधर्व और नर्तकी, ऐसे 7 प्रकार की सेना के जो देव हैं वे अनेक कहलाते हैं। अनेक एक तरह से सैनिक है, और जो देशवासी जनता के समान है वे देव प्रकीर्णक यकी प्रजाजन कहलाते हैं। हाथी घोड़ा सवारी वगैरह बनकर के जो देव दास के समान इंद्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं वे आभियोग जाति के देव कहलाते हैं, और चांडाल के समय के समान दूर रहने वाले जो पाप से युक्त देव हैं वे कुल विषय कहलाते हैं। ये जस्ट लाइक स्वीपर के समान है।
ये सभी निकायों में सभी तरह के
सभी तरह के निकायों में सब चारों निकायों में चारों
सभी इंद्र
हाँ वेंटर में भी उनके इंद्र प्रतिन्द्र सब सभी होते हैं। अब ये थोड़ी सी विशेषता बता रहे हैं कि ये दसों वेद सभी में नहीं पाए जाते, किसमें कितने नहीं होते ये बता दें। त्रायस्त्रुं श्लोकपाल गर्जा वेंटर ज्योतिष का वेंटर और ज्योतिष देवों के समूह में त्रायस्त्रुं और लोकपाल नहीं होते हैं, शेष आठ वेद होते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट है। लोकपाल एक प्रभावकारी होता है, एक प्रभावकारी
होता है। इंद्र होता
है, इंद्र तो जो दक्षिणेंद्र होते हैं स्वर्ग के,
अच्छा
वे ही एक प्रभावकारी होते हैं वैमानिक देवों में विशेष रूप से, बाकी देवों में ऐसा नियम नहीं है। पूर्व और द्विंद्रा, पहले के जो दो निकाय हैं उनमें दो दो इंद्र होते हैं, यानी जो 10 प्रकार के भवनवासी हैं उनके 20 इंद्र हो गए, और जो 8 प्रकार के वेंटर हैं उनके 16 इंद्र हो गए। इस प्रकार प्रत्येक निकाय के प्रत्येक भेद में दो दो इंद्र हो जाते हैं। अब देवों में जो अपने सुख और काम सेवन इत्यादि का ढंग क्या है वो बताते हैं। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, काम सेवन का नाम यहां पर प्रविचार है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव तथा सौधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग के देव अग्नि देवांगनाओं के साथ मनुष्य के समान शरीर से ही काम सेवन करते हैं। काय प्रविचारा आ ऐशानात, ऐशान स्वर्ग तक, यानी ऐशान स्वर्ग के पहले पहले के सब आ गए इसमें, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष सौधर्म और ऐशान, इतने देव अपनी देवांगनाओं के साथ मनुष्य के समान शरीर से ही काम सेवन करते हैं। शेष स्वर्गों में क्या स्थिति है तो कहते शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, शेष स्वर्गों में देव स्पर्श करने मात्र से, रूप देखने मात्र से, शब्द सुनने मात्र से या मन में विचार करने मात्र से ही काम सेवन से संतुष्ट हो जाते हैं। यानी सारथ कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव अपनी देवांगनाओं के आलिंगन मात्र से परम संतोष को प्राप्त कर लेते हैं, यही देवियों में भी यही चीज है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता और कापिस्ट इन चार स्वर्ग के देव अपनी अपनी देवांगनाओं के सुंदर रूप उनके श्रृंगार इत्यादि को देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार ये जो चार स्वर्ग हैं इनके देव अपनी अपनी देवांगनाओं के मधुर गीत या वचन या आभूषणों के भी शब्द सुनने मात्र से तृप्त हो जाते हैं। आनत प्राणत आरण और अच्युत ये 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं, 12वें 13वें 14वें 15वें और 16वें स्वर्ग के देव अपनी अपनी देवांगनाओं का मन में विचार आने मात्र से और संतुष्ट हो जाते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर देवों की क्या स्थिति है, उनके सुख कैसे हैं कहते परे अप्रविचारा, कल्प वासी से ऊपर जो कल्पातीत देव हैं उनके यहां पर देवांगनाएं ही नहीं होती, इसलिए उनके काम सेवन इत्यादि की वेदना नहीं होती,
उनकी इच्छा नहीं होती,
उनकी इच्छा ही नहीं होती, पर वे संयमी हैं ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे अपन, उनके उस तरह की इच्छा ही नहीं। तो 9 ग्रव्य 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो आमिंद्र देव कहलाते हैं वे काम सेवन नहीं करते, वहां देवांगनाएं भी नहीं होती हैं, और वहां इंद्र सामानिक इत्यादि का विभाजन भी नहीं होता, सभी एक ही कैटर में होते हैं। अहम इंद्र, मैं इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं, अहम इंद्र, बस सभी इंद्र हैं। भवनवासी देशों देवों में उनके भेद बता रहे हैं, वो जो इंद्र सामानिक इत्यादि भेद हैं वो तो उनके कैडर हैं, लेकिन अब उनकी अपनी अलग अलग क्वालिटी के भी देव हैं। भवनवासी में भी 10 क्वालिटी है। भवनवासी में सुरनाग विद्युत सुपरनाग निवापस तनितोद अधिक दीप दीप कुमारा, जो भवनवासी वो कहलाते हैं जो जो भवनों में निवास कर रहे हैं, ये भवनवासी कहलाते हैं। उनके 10 वेद हैं। असुर कुमार जाति के देव हैं, ये भवनवासी हैं। नाग कुमार जाति के हैं, ये भवनवासी हैं। विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बाद कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार, ये 10 जो है उनकी
प्रकार
है। सब देवों को जन्म से लेकर मरण तक एक सी ही अवस्था रहती है। वे अवस्था में हमेशा कुमार ही रहते हैं, वृद्ध इत्यादि नहीं
देखते हैं।
पर भवनवासी देवों की जो वेशभूषा है, अस्त्र शस्त्र, बातचीत, खेलना कूदना आदि है, वो सब कुमारों के समान होती हैं, बैचलर्स के समान होती हैं, इसलिए उनको कुमार शब्द विशेष रूप से लगा दिया है। जो मध्यलोक में अपन ने रत्न प्रभा, अधोलोक में जो रत्न प्रभा पृथ्वी का नाम पढ़ा था, तो उस रत्न प्रभा पृथ्वी के चित्रा पृथ्वी से नीचे 3 भाग हैं उसके, पंक खर भाग, पंक भाग और अब बहुल भाग। तो वो जो पंक भाग है उसमें असुर कुमारों के भवन बने हैं, और जो उसके नीचे खर भाग है उसमें बाकी 9 कुमार जो भवनवासी देव हैं उनके भवन बने हैं, जो उन्हीं में रहते हैं। यंत्रों के भेद 8 बताए थे, उनके नाम बता रहे हैं। यंत्रा किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। अनेक स्थानों पर जिनका निवास है और जो यहां वहां मध्यलोक में विचरण करते रहते हैं, वे व्यंतर कहलाते हैं। उनके 8 वेद हैं, उसमें एक किन्नर जाति के व्यंतर होते हैं, एक किंपुरुष जाति के, महोरक गंधर्व जाति के भी हैं, वो सब व्यंतर हैं, यक्ष जाति के, राक्षस जाति के, भूत और पिशाच जाति के, ऐसे 8 प्रकार के व्यंतर हैं। वो जो रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में अपन ने भवनवासी की चर्चा की थी, तो वहां पर राक्षसों के सिवाय 7 प्रकार के व्यंतर का आवास भी है भवनवासी के साथ साथ, और पंक भाग में राक्षसों का आवास है। किंतु पृथ्वी के ऊपर जो अनेक द्वीप, पर्वत, गांव, नगर, देवालय, चौराहे, वृक्ष इत्यादि, इन अनेक स्थान है, इन पर ये अपना निवास बना देते हैं। ओरिजिनली तो उनका वहां रहता है, क्रिया से घूमते रहते। ज्योतिषी देवों के भेद 5 बताए थे, वो कौन से हैं ये बताते हैं। ज्योतिष का सूर्य, चंद्रमसो, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्च। ज्योतिष के देव 5 प्रकार के, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और सर्वत्र फैले हुए तारे, वो प्रकीर्णक का अर्थ है सब दूर फैले हुए तारे हैं, प्रकीर्णक, तारकाश्च। ये सब चमकीले होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, इसलिए इनको ज्योतिष देव कहते हैं।
एक ही एक देव रहता है मगर ये सूर्य में, चंद्रमा में,
इसमें
भवन।
हाँ, ये सूर्य और चंद्र तो विमान है, उसमें चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है। ज्योतिषी देव जो है वो मध्यलोक में ही है, पर मध्यलोक से धरातल से 790 योजन ऊपर जाकर के और ये विचरण करते हैं। सब ज्योतिषी देवों के इन तारों से ऊपर 10 योजन जाकर सूर्य का विमान है, सूर्य से 80 योजन जाकर के चंद्रमा का विमान है, चंद्रमा से 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्र है, नक्षत्र से 4 योजन जाकर के बुध का विमान है, बुध से 3 योजन ऊपर शुक्र का है, शुक्र से 3 योजन ऊपर बृहस्पति है, बृहस्पति से 3 योजन ऊपर मंगल, और मंगल से 3 योजन ऊपर शनि ग्रह है। इस तरह 110 योजन की मोटाई में सब ज्योतिषी देव अंतरिक्ष में ज्योतिषी देवों का गमन किस प्रकार होता है ये बताने के लिए आगे का सूत्र आया। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गच्छो व्रीलोके। ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा के रूप में सदा गमन करते रहते हैं, और तत्कृतः काल विभागा, और उनके इस तरह गमन करने से ही, ज्योतिषी देवों के गमन करने से ही काल का विभाजन होता है, घड़ी, घंटा, दिन, रात इत्यादि हमें मालूम पड़ जाता है। द्वि लोक से अर्थ है मनुष्य लोक। मनुष्य लोक को 2.5 द्वीप भी कहते हैं, दो समुद्र और अढ़ाई द्वीप, ये पूरा मनुष्य लोक कहलाता है। मनुष्य लोक में जो ज्योतिषी देव हैं वो मेरु से 1121 विजन दूर रहकर उसके चारों ओर सदा घूमते रहते हैं। जम्बूद्वीप में 2, लवण समुद्र में 4, धरती खंड में 12, काली नदी में 42 और पुष्करार्ध में 72 चंद्रमा है। और एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये इस तरह एक निहारिका, जिसको अपन कहें गैलेक्सी एक तरह का आज की भाषा में, इसका वर्णन इसमें मिलता है। इशारा तो किया है आचार्य ने कि इसी तरह गैलेक्सी बनती हुई जिसमें इतने सूर्य इतने चंद्रमा, तो आज वर्तमान में ये आता है कि इतने
कर रहे हैं, अभी
खोज कर रहे हैं,
इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा
है। तत्कृत काल विभाजन का अर्थ है ज्योतिषी देवों के गमन से ही काल का विभाजन होता है। ज्योतिषी देव क्या सब जगह घूमते ही रहते हैं? तो एक सूत्र अलग से बना दिया कि बाहर अवस्थित है, मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव अवस्थित हैं, अर्थात गमन नहीं करते, स्थिर रहते हैं। जो आज साइंस में कहीं ये माना जाता है कि सूर्य स्थिर है, वो नहीं घूमता, पृथ्वी घूम रही है, वो बहुत कुछ जो है इस बात से पुष्ट होता है कि ढाई द्वीप के अंदर तो सूर्य घूमता है, पर ढाई द्वीप के बाहर सूर्य इत्यादि सब स्थिर है। अब इस पर काम होना चाहिए। इस तरह पवनवासी गंतर और ज्योतिषी देवों का वर्णन पूरा हुआ। वैमानिका, वैमानिक भी देव है, जिसमें रहने वाले जीव विशेष रूप से पुण्यशाली माने जाते हैं, उन्हें वैमानिक विमान कहते, सॉरी, और विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं उन्हें वैमानिक कहते, ऐसी व्याख्या इन्होंने की है। विमान 3 तरह के बताए हैं, एक इंद्रक होता सेंटर में और एक श्रेणीगत उसके चारों कार्नर पर, और प्रकीर्णक पुष्प के समान यहां वहां भी बने रहते हैं, स्केटर्ड जिसको अपन कहेंगे। तो जो विमान इंद्र के समान सभी विमानों के बीच में है वो इंद्रक विमान कहलाएगा, उसके चारों दिशाओं में कतार के रूप में जो विमान है वो श्रेणीबद्ध कहलाएंगे, और जो सारी सब दूर बिखरे हुए हैं तो विमान प्रकीर्णा कहलाते। इस तरह ये देवों के वैमानिक देवों के विमान हैं। कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, वैमानिक देव दो प्रकार के हैं, कल्पवासी और कल्पातीत, या कल्पोपन्न और कल्पातीत, ऐसे दोनों भेद कर दिए। 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं, जहां इंद्र आदि की कल्पना की जाती है, इंद्र है सामान्य के त्रायस्त्र, ऐसी कल्पना जहां है वो सब कल्पोपन्न या कल्पवासी हैं, और जहां पर इस तरह की कल्पना नहीं है ऐसे ग्रवेद अनुदिश और अनुत्तर विमानों में जो देव हैं वे सब कल्पातीत देव कहलाते हैं। ऊपरी ऊपरी, ये जो कल्प हैं वे एक दूसरे के ऊपर ऊपर हैं। उन कल्प के क्या नाम हैं, उनमें जो वैमानिक देव रहते हैं उनके क्या नाम हैं, उसके लिए सूत्र बताते हैं। सौधर महिषान सानत कुमार माहिंद्र ब्रह्मोत्तर लांत का पिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वान प्राण तय रारणाच्युतियो नवसुग्रैवेकेशु विजय वैजयंत जयंतापराजितेशु सर्वार सिद्ध उचा। सौधर महिषान सानत कुमार माहिंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत का पिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत, ये 16 स्वर्गों के नाम। इसके ऊपर 9 ग्रैवेक है, 9 अनुदिश है, और विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि, ये 5 जो है अनुत्तर विमान इसके ऊपर है।
पंचम काल में सर्वार सिद्धि पर तो जा नहीं सकती?
नहीं, पंचम काल में तो 16 स्वर्ग तक ही
जा सकती
है। वैमानिक देवों की और क्या विशेषताएं हैं इसकी चर्चा आपने करा, काफी हो गया। वैमानिक देवों के कल्प के नाम तो बता दिए, अब उन वैमानिक देवों में परस्पर क्या विशेषता है ये भी बताते हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तो का, जो वैमानिक देव हैं उनमें स्थिति प्रभाव सुख द्युति और लेशा की विशुद्धि,
और इंद्रियों के विषय और अवधिज्ञान का विषय, इन बातों में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अधिकता होती चली जाती है। आयु कर्म के उदय से एक निश्चित भाव में रहना, इसका नाम स्थिति है। स्थिति की एक परिभाषा ये है। दूसरी, कर्म का बंधने के बाद अपने स्वभाव को जब तक नहीं छोड़ता तब तक वो स्थिति कहलाती। यहाँ पर वो स्थिति नहीं है, यहाँ पर आयु कर्म के लिए कहा कि आयु कर्म के उदय से उसी भाव में जिस भाव में जीव रह रहा है वो उसकी स्थिति कहलाती। और दूसरे का भला बुरा करने की जो सामर्थ्य है, शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, अच्छा और बुरा करने की जो सामर्थ्य है वो प्रभाव कहलाती। फिर दूसरा शब्द आया सुख। तो सातावेदनी कर्म के उदय में इंद्रियों के विषयों को भोगने से प्राप्त होने वाला जो इंद्रिय सुख है उसको यहाँ सुख लिया है। शरीर वस्त्र और आभूषण आदि की जो चमक है, लश्चर जिसको कहेंगे, वो द्युति कहलाती है। द्युति के लिए एग्जैक्ट वर्ड तो लश्चर ही है, लश्चर के। फिर लेश्य की विशुद्धि को लेश्य विशुद्धि कहेंगे, उसकी निर्मलता, ये बढ़ती चली जाती। माने पीत लेश्य, फिर पद्म लेश्य और ऊपर के देवों में शुक्ल लेश्य।
सुहाव हो गया ना, लेश्य माने सुहाव,
लेश्य मतलब भाव दशा।
भाव दशा ठीक,
तो भाव दशा में निर्मलता आती चली जाती, परिणामों की निर्मलता बढ़ती है। प्रत्येक कल्प और प्रत्येक कल्प के प्रत्येक पटल के जो वैमानिक देव है वो इन बातों में अपने अपने देवों से अधिक अधिक है। इंद्रियों का और अवधि ज्ञान का विषय भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाता है। ये सब बातें इस तरह अधिकार शब्द से इन्होंने बता दी। और क्या होता है, गति शरीर परिग्रह भी मानतो ही ना। लेकिन एक बात है कि जो वैमानिक देव है, जैसे जैसे ऊपर के देव बढ़ते जाते उनकी गति, उनका शरीर की ऊंचाई और परिग्रह और अभिमान ये सब कम होते चले जाते। अब देखिएगा बहुत ये मजेदार है इसमें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन की सामर्थ्य है वो गति कहलाती है। तो इन देवों में गति जो है वो आने जाने की इच्छा कम हो जाती है। बड़े व्यक्ति के अंदर वैसे भी आने जाने की ज्यादा चिंता नहीं होती, जब ठीक है सब देख लिया अब हमने क्या करना है। इसलिए ये कह रहे हैं कि गति कम होती है, आते जाते कम है। परिग्रह कहते हैं अपने यहाँ ममत्व को, तो ये कह रहे हैं कि लोभ कषाय के उदय से जो ममत्व भाव है वो परिग्रह कहलाता है। ये परिग्रह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है अपने को कि इनका वैभव बढ़ता चला जाता है। देखिए वैभव बढ़ता चला जा रहा है और आसक्ति कम होती है। यहाँ पर परिग्रह से कम होने से मतलब उनके पास वैभव कम है ऐसा नहीं, जितना ऊंचा देव होगा उतना वैभवशाली है, लेकिन उस